ஓம் சாந்தி. சபி கேசே ஆஜ் பஹுத் படியா. தீன் தின் கே அந்தர்கத் ஔர் பி படியா ஹோ ஜாயேகா. சுந்தர் வாதாவரண், சுந்தர் வைப்ரேஷன்ஸ், உஸ்கே சாத் சாத் பஹுத் குச் சீக்னே கோ மிலேகா யஹான், ஹை நா. ஜீவன் கே பாரே மே, லைஃப் கே பாரே மே, கேசே அப்னே எஃபிஷியன்சி கோ படாயா ஜாயே, எக் அலக் திருஷ்டிகோண் ஜீவன் கே பாரே மே யஹான் சுன்னே கோ மிலேகா. ஔர் காஸ் இஸ் சத்ர மே ஹம் தேகேங்கே மெடிடேஷன் கே பாரே மே. மெடிடேஷன் யஹான் ஜோ சிகாயா ஜாதா ஹை இஸ்கோ ராஜயோக் கஹா ஜாதா. பஹுத் சிம்பல் ஹை, பஹுத் ஹி முஷ்கில் நஹி ஹை. இஸ்கே தீன் கதம் ஹை, தீன் ஸ்டெப்ஸ் ஹை. சப்ஸே பஹலா ஹை ஜோ ஆஜ் ஹம் தேக்னே ஜா ரஹே ஹை வோ ஹை ஸ்வயம் கா பரிச்சய. ஔர் செகண்ட் ஸ்டெப் ஹை பரமாத்மா கா யதார்த் பரிச்சய ஜோ கல் சுபஹ கே செஷன் மே ஹம் தேகேங்கே. ஔர் தீஸ்ரா ஸ்டெப் ஹை பர் ஆத்மா கா கனெக்ஷன் பரமாத்மா கே சாத் கேசே ஹம் ஜோடே, க்யோங்கி ஹர் ஏக் அப்னே தரிக்கே சே பரமாத்மா கோ அலக் அலக் ரீதி சே யாத் கர்த்தே ஆயே ஹை, பூஜ்தே ஆயே ஹை, லேகின் கம் மெஹனத் மே ஜாதா ரிசல்ட் ஹம் கேசே ப்ராப்த் கர் சக்தே, வோ ஹம் இஸ் ராஜ்யோக் கே த்வாரா அனுபவ் கர் சக்தே ஹை. க்யோங்கி ஆஜ்கல் கே ஜமானே மே சப் குச் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஹை நா, இன்ஸ்டன்ட் சப் குச் ஜல்தி ஜல்தி சாஹியே. தோ யே பி ஐசா பஹுத் ஹி பவர்ஃபுல் மெடிடேஷன் டெக்னிக் ஹை ஔர் வெரி சிம்பிள், பஹுத் சிம்பிள் ஹை. தோ சப்ஸே பஹலா ஜோ ஸ்டெப் ஆஜ் ஜோ ஹம் தேக்னே ஜா ரஹே ஹை ஸ்வயம் கா யதார்த் பரிச்சய. ஜப் ஹம் கஹேங்கே பரிச்சய தோ ஹம் சப்கோ பதா ஹை ஹி ஹை ஆப்கா குத் கா பரிச்சய க்யா ஹை, அப்னே ஆப்கோ இன்ட்ரோடியூஸ் கர்னே கி பாத் ஆதி ஹை. தோ கஹீ சீஜே ஹம் உஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் மே கேதே ஹை, கௌன் கௌன் சி சீஜ் கேதே ஹை, நாம், ப்ரொஃபேஷன், எஜுகேஷன், குவாலிஃபிகேஷன், ப்ரொஃபேஷன், நேஷனாலிட்டி, ரிலீஜன், ஏ சாரி பாத்தே ஏ அப்னே இன்ட்ரோடக்ஷன் மே கஹி ஜாதி ஹை. க்யா யே இன்ட்ரோடக்ஷன் ஜோ அபி தக் ஹம் அப்னே ஆப்கா தேதே ஆயே ஹை யே சம்பூர்ண ஹை, சம்பூர்ண ஹை. க்யூ நஹி சம்பூர்ண ஹை, அஸ்லியத் சே தூர் ஹை, இல்யூஷன் மே பிராந்தி மே ஜீ ரஹே ஹை, இஸ்கா மத்லப் ஹை. யே குச் ஹத் தக் சச் ஹை லேகின் சம்பூர்ண சத்ய நஹி ஹை. க்யூ, க்யோங்கி யே ஜோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹம் தே ரஹே ஹை அப்னே ஆப்கா இன் சபி சீஜோ கோ லேகர் கே, யே குச் ஹத் தக் சச் ஹை ஔர் கேவல் பாஹரி சச் ஹை, ஆந்தரிக் சச் நஹி ஹை. க்யூ, ஜப் ஹம்னே ஜனம் லியா தா தோ உஸ்மே கோய் பொசிஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நஹி தா, தபி பி ஹம் அஸ்தித்வ மே தே, உபஸ்தித் தே. ஔர் ஜோ பொசிஷன்ஸ் ஜோ பி ஹை ரிடையர்மென்ட் ஹோனே கே பாத் பி ஹம் இஸ் துனியா மே ரஹேங்கே, இஸ்கா மத்லப் ஹை யே கேவல் ஹமாரா சப்போர்ட் ஹை. ஜப் கோய் வியக்தி ஷரீர் சோட்தே ஹை யா மர் ஜாதே ஹை, மிருத்யு ஹோதா ஹை உன்கா, தோ யே உஸ்கா ஷரீர் தோ உபஸ்தித் ஹை, இன்டாக்ட் ஹை சப் குச், கோய் பாஹரி சோட் திகாய் நஹி தே ரஹா ஹை, குச் நஹி ஹை, சப் குச் டீக் ஹை, ஃபிர் பி ஹம் கேதே ஹை ஹம்சே தூர் ஹோ கயே ஹை, ஹம் சலே கயே ஹை. தோ க்யா சீஸ் ஹை ஜோ உஸ் யே ஷரீர் சே நிகல் கயி ஹை, ஷரீர் தோ திகாய் தே ரஹா ஹை பஹுத் ஹி அச்சா ஹை, லேகின் ஃபிர் பி ஹம் ரோ ரஹே ஹை, வோ நஹி ஹை வியக்தி கர் கயி. க்யூ, க்யா சீஸ் ஹை ஜோ இஸ் ஷரீர் சே நிகல் கயி ஹை, ஆத்மா கஹே, பிராண கஹே, டிரைவிங் ஃபோர்ஸ், ரூஹ், ஸ்பிரிட், ஜோ பி ஹம் கஹே, जो शक्ति थी उस शरीर के अंदर, चाहे किसी भी नाम से वो पुकारे उस शक्ति को, उस शक्ति इस शरीर से निकल गई है। तो ये अभी दो चीजें हो गई। अभी वो जो आत्मा है वो है, और ये शरीर है ना। तो ये इन दोनों में से मैं खुद कौन हूं, ये शरीर में हूं या फिर वो आत्मा मैं हूं, क्या कहेंगे क्या कहेंगे आत्मा हमें, राइट? सच है, सब मानेंगे इस बात को, क्योंकि एक दिन तो जाना है इस शरीर को छोड़कर। तो शरीर क्या है? शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको धारण करके हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं। इस शरीर के बिना आत्मा अलोन, आत्मा अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझ आत्मा को बोलना है, इस मुख का आधार लेना पड़ेगा, देखना है इन आंखों का आधार लेना पड़ेगा, सुनना है तो इन कानों का आधार लेना पड़ेगा। इस शरीर के आधार, शरीर के सपोर्ट से मैं कर्म करती हूँ, अपने इच्छाओं को पूर्ण करती हूँ, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करती हूँ, कर्म करती हूँ। लेकिन ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, है ना? तो इसीलिए ये सारी जो आइडेंटिटी अपने आप का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाने वाला है, एक दिन इसको छोड़ के जाना होगा। और जो हम मेहनत कर रहे, इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं इस शरीर के को देखभाल करने के लिए, है ना, इस शरीर के देखभाल के लिए हम कमाते हैं, खाते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, केवल इस शरीर के देखभाल के लिए। लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए हमें कुछ करने का अभी समय आ गया है। क्यों? क्योंकि वही मेन है, वो मास्टर है। ये शरीर केवल पंच तत्वों से बना हुआ है, जो भी स्केलेटन है, जो भी ये चीजें हैं, केवल पंच तत्वों से बना हुआ है। लेकिन मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, नूर हूँ, लाइट हूँ, है ना? तो इस लाइट, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, है ना? ऐसे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। इन आंखों से हम उस शक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं बस, है ना? लेकिन आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन क्या है? क्योंकि बचपन से लेकर, जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक हमारा संबंध है इस शरीर के साथ, है ना? गहरा संबंध है इस शरीर के साथ। भले हम कितना भी कहें हम इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, इस वस्तु को बहुत प्यार करते हैं, ये सब झूठ है। सबसे ज्यादा हम प्यार किसको करते हैं? अपने आप को, अपने आप को करते हैं। तो इसलिए ये भी कहते हैं, जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, तो ये अनाउंसमेंट किया जाता है ना, दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करो। क्योंकि अगर मैं खुद ठीक हूं तो फिर दूसरों को मैं कुछ दे सकती हूँ। अगर मैं अपने आप को प्यार कर सकती करूंगी तो दूसरों को भी प्यार कर सकती हूँ। तो अपने आप के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, उसको हमें पहले भरने की जरूरत है, ताकि फिर हम दूसरों के साथ उन गुणों को, उन शक्तियों को शेयर कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा मुझ आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध क्या है, है ना? क्योंकि इतने गहराई से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं फलाने धर्म की हूँ, मैं फलाने प्रोफेशन की हूँ, मैं फलाने फैमिली परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो इतने गहराई से अपने आप को आइडेंटिफाई, उस परिचय के साथ अपने गहराई से आइडेंटिफाई किया हुआ है। लेकिन उस आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा, उस आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा, बहुत सारा लिमिटेशंस क्रिएट होगा। मैं स्त्री हूँ तो इसलिए मैं ये चीज कर नहीं सकूंगी, मैं निशक्त हूँ तो इसीलिए ये नहीं कर सकती, मैं फलाने देश को बिलोंग करती हूँ तो ये मान्यताएं ये हैं। तो अलग अलग जो ये इस परिचय के साथ मैं कनेक्ट जब करती हूँ, बहुत सारे लिमिटेशंस क्रिएट हो जाता है और फिर वहाँ बहुत सारे नेगेटिविटीज भी आ सकता है, और क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। तो उसको इससे थोड़ा सा ऊपर होकर के फिर ये पहचाने कि मैं अपने आप ये ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और इस शरीर के साथ मेरा कनेक्शन क्या है, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को धारण करके कर्म कर रही हूँ, ना कि मैं शरीर हूँ जिसके अंदर आत्मा है, है ना? तो एक सीप है, सीप वैल्यूबल है या फिर उसके अंदर जो मोती है वो वैल्यूबल है? मोती उस मूल्यवान है, सीप चाहिए लेकिन मोती बनने के लिए, लेकिन मूल्यवान मोती है। ऐसे ही ये शरीर मेरा सीप है और मैं आत्मा मोती हूँ जो बहुत ही अमूल्य हूँ, क्योंकि मैं आत्मा जो सोचती हूँ वो कर्म करती हूँ। ये आंखें नहीं देखती, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। ये कान नहीं सुनते अपने आप में, डेड बॉडी अगर होता तो फिर वो सुनता है डेड बॉडी, दिखता है वो डेड बॉडी, बोलता है वो डेड बॉडी नहीं, ये सारे कर्म करने वाली आत्मा है ना? तो मैं ये शरीर मेरा गाड़ी, मेरी गाड़ी है और मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। गाड़ी भले कितना भी एक्सपेंसिव हो लेकिन अगर जब तक वो गाड़ी रोड पर नहीं आता, ड्राइव नहीं करेंगे तो तब तक उसका वैल्यू नहीं है, है ना? गैराज में भले सालों सालों तक रखेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसका आनंद ही नहीं ले रहे हो, रोड पर ही नहीं उतार रहे हो उसको, उसका वो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही इस ये बॉडी बहुत वैल्यूबल है, ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ यह सोचते हुए शरीर की देखभाल नहीं करना है, नहीं, उसकी भी देखभाल करना है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर इस बॉडी को के वैल्यू अगर देखें, कितना वैल्यूबल है ये बॉडी, ये शरीर, अगर एक एक ऑर्गन को के अगर वैल्यू लगाएं, लाखों में बिकता है, किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, तो लाखों में बिकता है। तो अगर ये देखें, ये शरीर करोड़ों का वैल्यू है इस शरीर का, लेकिन जब तक आत्मा नहीं है इस शरीर में, उसका वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती, ये सारे जो वैल्यूबल ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ सड़ना शुरू हो जाता है ना? तो इसीलिए ये जरूरी है समझना। और तीसरी बात है, ये शरीर मेरा घर है, मैं आत्मा इसका ओनर हूं। अगर देखे कि वो उस मकान को अगर देखे, किसके फलाने किसका मकान है ये, क्या बोलेंगे उसको? फलाने व्यक्ति का मकान है, व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई होता है, केवल मकान के साथ आइडेंटिफाई नहीं होता है। इसलिए आत्मा रथी है, ये शरीर मेरा रथ है। तो इसलिए जब डेड बॉडी होता है कहते अर्थी, अर्थी किसको क्यों कहते हैं डेड बॉडी को, जो रथ है जिसके अंदर रथी नहीं है, अरथी, जिसके अंदर रथी ना हो ऐसा रथ, ये रथ बन जाता है। तो ये मेरा किंगडम है, ये मेरा राज्य है, ना केवल स्थूल कर्मेंद्रिया मेरा राज्य है, मन बुद्धि संस्कार भी मेरा राज्य है। मोबाइल, ये शरीर मेरा मोबाइल है, आत्मा सिम है। शरीर रोबोट है, आत्मा प्रोग्रामर है। तो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमने ये समझा, ये दो अलग अलग बात है, आत्मा और शरीर। इन दोनों में से मैं आत्मा मालिक हूँ। इस शरीर को जैसा मैं चलाना चाहूँ वैसा चला सकती हूँ। ऐसा नहीं कि हाथ चल गया, चलने के बाद ये हाथ चल गया, मैंने नहीं किया, आप हाथ अपने आप चल गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, मैंने चलाया ना हाथ को। मैं अगर पैर चल गए और कहे कि नहीं मैंने नहीं, मैं नहीं चली, पैर अपने आप चल गए, नहीं होता है। मैं आत्मा इस शरीर को ऑर्डर देती हूँ तब ये शरीर चलता है। तो लेकिन मैं आत्मा मालिक हूँ, ये समझना जरूरी है। जब मैं समझती हूँ कि मैं आत्मा मालिक हूँ तो फिर मैं जैसा चाहूँ उसको चला सकती हूँ। कंट्रोलर हो, मालिक हो, मास्टर हो, इन कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे चला सकती हूँ। लेकिन कई बार गुस्सा आता है, नेगेटिव जो गुण है, अवगुण है, वो जब हम महसूस करते हैं या फिर कर्मों में वो दिखाई देता है, कई बार हम कहते हैं ये गुस्सा मेरा नेचर है, ये मेरा संस्कार है, मैं हूँ ऐसे। तो आत्मा जब हम कह रहे हैं, आत्मा के निजी गुण क्या है फिर? जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, ये सब ये आत्मा के गुण है। क्या कहेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो फिर गुस्सा क्यों आता है, इरिटेट क्यों हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर? नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये सब बातें क्यों आती हैं? आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाया इसीलिए, और संस्कार गलत हो गए हैं इसीलिए वो सब है, और नेचुरल समझ में हूं ही ऐसे। ये अपने आप को ये आइडेंटिफाई किया है कि हाँ मेरे अंदर क्रोध है, मैं हुई ऐसे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है आत्मा सतोगुणी है। ये सातों ही गुण आत्मा के निजी नेचर है, निजी संस्कार है, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, खुशी, स्नेह, ये सब सातों ही गुण जो देख रहे हैं, ये सातों ही गुण आत्मा के निजी गुण है। लेकिन नेगेटिव संस्कार कहाँ से आ गया? अवगुण हम अपने अंदर कहाँ से आ गया? क्योंकि जैसे जिस शरीर में पानी की मात्रा 75-78% कहते हैं, शरीर में पानी की मात्रा जब कम हो जाता है प्यास लगने लगती है। तो पानी जब ले लेते तो पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा तो फिर प्यास नहीं लग, बुझ जाता है, प्यास नहीं लगती। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सात गुण जो है संपूर्ण रूप से अपने अंदर सब कुछ है, लेकिन इसका परसेंटेज 100% से थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना, तो फिर उसका विपरीत हम अनुभव करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर शांति की मात्रा अगर 100% नहीं है, मान लीजिए 80% है, 70% है या 50% है, जितना परसेंटेज कम होता जाता है उतना गुस्से की मात्रा, क्रोध की मात्रा बढ़ता जाएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि शांति का परसेंटेज मुझ आत्मा के अंदर कम हो गया है, बस उतना ही है। जब इस बात को समझेंगे तो फिर हम क्रोध से मुक्त होने का होने की मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, शांति जो मेरा ओरिजिनल नेचर है उसको फिर से भरने की कोशिश हम करते हैं। जितना मैं अभ्यास करती जाऊंगी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति की मात्रा परसेंटेज बढ़ता जाएगा, क्रोध कम होता जाएगा। ऐसे स्नेह प्यार की मात्रा कम हो जाएगा, फिर नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो स्नेह प्यार जो निस्वार्थ प्यार आत्मा का निजी नेचर है वो हम महसूस करते जाएंगे। और खुशी की मात्रा कम होगा तो दुख दुख ज्यादा बढ़ता जाएगा, डिप्रेस्ड होते जाएंगे। तो इसीलिए खुशी और शांति, जैसे कहा पवित्रता, पवित्रता जब कम हो जाता है तो फिर हेराफेरी, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, आगे कुछ पीछे कुछ, तो ये सारा कुछ हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। और ज्ञान की कमी होगा तो अज्ञानता, अज्ञानता जब है तो फिर उसको स्वीकारेंगे, मैं हूं ही उतना ही, मुझे बहुत कुछ आता है। वो जो सीखने के लिए जो दरवाजा है वो हम बंद करके बैठते हैं और सीखने के लिए फिर वो नहीं सीख पाते हैं। और शक्ति पावर कम है, डिटर्मिनेशन कम है, दृढ़ता कम है, तो फिर निशक्तता, काम नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें अपने अंदर आ जाता है। लेकिन आत्मा की ओरिजिनल ये सब है, हमें ये समझना होगा। जब हम ये स्वीकारते हैं, समझते हैं, इन बातों को अनुभव करना इजी हो जाता है। और स्पोर्ट्समैन को स्पेशली डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की बहुत सख्त जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो ये जब हम अनुभव करते जाएंगे ये सारी बातें, दृढ़ता डिसिप्लिन अपने जीवन में, अनुशासन, ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है। इजी है, मुश्किल नहीं है ना। ये सारी बातें अनुभव करने के लिए हमें सालों सालों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, एक टांग पर खड़े होकर के ये तपस्या करने की जरूरत नहीं, ठंड में रहने की जरूरत नहीं, ये सब नहीं। केवल सोच में डिफरेंस, बस सोच में अंतर लाए तो सब कुछ हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें, ज्ञान में कम हो, ज्ञान कम हो तो फिर डाउट्स, अंधश्रद्धा, ईगो, सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। पवित्रता की कमी है तो वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ बातें, गंदे चीजें, तो ये सब कुछ आना शुरू होता है। स्नेह की कमी है तो सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी हो जाएंगे, खुद के लिए, हम मुझे कुछ सब कुछ चाहिए। शांति की कमी है तो क्रोध, टेंशन, डर, ये सब कुछ बढ़ता है। खुशी की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है तो लालच, लोभ, सब कुछ बढ़ता है। आनंद की कमी है, अटैचमेंट, मोह, माया, ये सब कुछ बढ़ता है। शक्ति की कमी है, ये सोचते कि मेरा पोजीशन ही, बाहरी शक्ति के बारे में ज्यादा हम ध्यान देंगे लेकिन आंतरिक शक्ति के बारे में हम कम ध्यान देंगे। तो इन सभी बातों को अनुभव करने के लिए, जैसे शरीर में अलग अलग कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे आत्मा के अंदर तीन कर्मेंद्रियां हैं, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम सोचते हैं, जैसे मन के चित्र में देख रहे हैं वेव्स जैसा है, है? सागर, सागर में लहरें एक के पीछे एक कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा लहरें है ही नहीं, है ना, कभी ज्यादा कभी कम। ऐसे ही मन में एक के पीछे एक विचार आते रहते हैं, उसको अमल नहीं कर सकते, मना एकदम शून्य कर दे, एकदम विचारों को उत्पन्न ना ही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का काम ही है विचारों को उत्पन्न करना, विचारों को क्रिएट करना मन का कर्म है, मन का काम है। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मन को सशक्त बनाने के लिए उसको चैनलाइज कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि मन को सशक्त क्यों बनाना है, मन को सशक्त क्यों बनाना है, मन को सशक्त क्यों बनाना है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। जो विचार है वो बीज है, कर्म फिर उसका एक्सटेंशन है। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मुझे एक मकान बनाना है, वो मकान बनाने का विचार कहाँ कब आया, यहाँ मन में आया ना पहले, फिर प्लानिंग चला कहाँ क्या होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, ये सारे विचार मन के अंदर आया, फिर वो पेपर पर उतारा, फिर पेपर पर उतारने के बाद फिर प्रैक्टिकली उसको बनाया, लेकिन क्रिएट कहाँ किया पहले, मन के अंदर। तो बीज है ना वहाँ, या इसको बदलेंगे तो बाहरी जो रिजल्ट है उसको हम ऑटोमेटिकली बदल सकते हैं। रिजल्ट को बदलने के लिए यहाँ बदलना बहुत जरूरी है, यहाँ हम पावरफुल है, सशक्त है, तो अपने कर्म भी शक्तिशाली होंगे, फिर अपना रिजल्ट भी शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए मन के ऊपर प्रभाव कौन कौन सा डालता है, मन में तो विचार चलते हैं लेकिन उसके ऊपर प्रभाव सेंसरी इनपुट जो हम देखते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, जो सुनते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, बिलीफ सिस्टम जो मान्यताएं चली आई है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और पास्ट मेमोरीज जो हमारा भूतकाल है, जो हमारे यादें हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और अपनी क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों का प्रभाव मन पर पड़ता है। लेकिन इसको मैनेज करते हुए, इन सभी चीजों को मैनेज करते हुए अगर हम पॉजिटिविटी के तरफ लेके जाएंगे, सकारात्मकता के तरफ ले जाएंगे, मन सशक्त होता जाएगा। चार प्रकार के विचार हम क्रिएट करते हैं मन में, एक है सकारात्मक सोच, दूसरा है नकारात्मक सोच, तीसरा है व्यर्थ सोच, और चौथा है आवश्यक सोच। ये है क्या चीज, वैसे तो कहते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन सकारात्मकता है क्या चीज, हम सुनते आए हैं राइट, कि सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी है क्या चीज फिर, अच्छाई। तो अच्छाई का डेफिनेशन क्या है, जो मेरे लिए अच्छा है तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो राइट। तो अच्छा क्या है, पॉजिटिव क्या है, जिसमें भी आत्मा को खुशी दे, आपको इंसल्ट करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो फिर एक बार तो आत्मा रोती है अंदर से आएगी। हाँ तो कुछ सिंपल डेफिनेशन बताइए, पॉजिटिविटी है क्या, हर परिस्थिति में खुश रहना, ठीक है मैं तो खुश हूं हर परिस्थिति में, दूसरों को दुख दे करके मैं बहुत खुश हूं, हमारे लिए नहीं। पॉजिटिविटी वो है, सकारात्मकता वो है जो मैं खुद खुश रहूं और दूसरों को भी खुशी दूं, ये सिंपल है ना, जो केवल मैं खुश रहूं उसमें क्या है स्वार्थता, आ जाती। लेकिन जिस कर्म के द्वारा मैं दूसरों को खुशी दूं और खुद खुश हूं, दूसरों को सुख दूं और खुद भी सुखी रहूं, ये दोनों हो गए ना, तब कहेंगे पॉजिटिव सोच। मैं सोचूं कि मेरा घर साफ रहे, लेकिन घर का कचरा सारा मैं रोड पर डालूं, ये तो राइट बात नहीं है ना। दूसरे भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, ये है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव सोच, वो कर्म करने के लिए सोच, यहां हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, उतना आत्मा के अंदर शक्ति ताकत बढ़ती जाएगी। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस और माइनस, पॉजिटिव थिंकिंग से एड अप होता जाएगा, आत्मा सशक्त होता जाएगा। और नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच जस्ट अपोजिट, जिस कर्म के द्वारा मैं दूसरों को दुख दे रही हूं और इन रिटर्न मैं दुखी हो रही हूं। भले जैसे आपने कहा कि भले हम, मैं अभी दूसरों को दुख दे करके मैं खुश हूं, लेकिन कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। भले आज मैं खुश हूं, लेकिन कल मुझे दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दूसरों को दुख दिया है। ये है नेगेटिविटी, है ना। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, कर्म को तो बाद में आएगा, लेकिन यहां हमें परिवर्तन करना होगा। जब भी नेगेटिव सोच आया, उसको हमें परिवर्तन करना होगा, नहीं तो फिर आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कम होता जाएगा। और वेस्ट, व्यर्थ सोच ये है, पॉजिटिव जितना पावरफुल भी नहीं है और नेगेटिव जितना खराब भी नहीं है, वो बीच में है। जैसे स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन एकदम एक दिन में मारता नहीं है, है ना, धीरे 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 अंदर खोखला कर देता है और धीरे धीरे मारता है और एक दिन लंबे काल के बाद उसको मारता है। ऐसे ही वेस्ट, वेस्ट वो है जो अनावश्यक, जो पास्ट के बारे में अनावश्यक हम सोचते, बीत गई है बातें जो हम परिवर्तन कर नहीं सकते, उसके बारे में सोच सोच करके कोई फायदा नहीं है। और अनावश्यक भविष्य की चिंता, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कर्म कर नहीं रही हो उसके लिए प्लानिंग तो जरूर करना है, लेकिन सोच सोच करके सोच रही हो, लेकिन उसके लिए मैं कर्म कुछ नहीं कर रही हूं, उससे भी कुछ फायदा नहीं है। वर्तमान में, वर्तमान को जितना हम यथार्थ रूप से हम यूज करते जाएंगे, भविष्य हमारा उज्जवल होगा ही। तो इसलिए वेस्ट, जब भी हम पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सोच आता है, तो उसको वहां ही काट देना चाहिए। और दूसरी बात है, ये सोच आता है या हम सोचते हैं। ये कहते हैं ना कि नेगेटिव विचार आते हैं, समझे, हम बैठे हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं, कोई भेज रहा है तभी आ रहा है, कहां से आ रहा है, विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, बाहर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, अंदर से आ रही है, कौन उसको रच रहा है, कौन उसकी रचयिता है, हम खुद हैं, है ना। जब हम इस बात को समझेंगे ना, तो फिर हम दूसरों पर दोष नहीं डालते, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से मैं ऐसा कर रही हूं, नहीं, मैं मास्टर हूं, सोच भी मैं कर रही हूं, विचार भी मैं क्रिएट कर रही हूं, है ना, मैं मास्टर हूं। जब ये समझ में आएगा, तो फिर विचारों को परिवर्तन मैं ऑटोमेटिकली कर सकती हूं, मैं मालिक हूं, है ना। और चौथी बात है आवश्यक सोच, जो कर्म के प्रति, यहां जाना है, ये कर्म करना है, सब्जी खरीदना है, ये सफाई करना है, ये खेल करना है। तो ये जो कर्म के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति हम जो सोचते हैं वो है आवश्यक सोच। अब अपने आप को देखिए, इन चारों ही प्रकार के विचारों में से ज्यादा कौन से विचार आपके मन में चलते हैं दिन भर में? दिन भर में कौन से विचार चलते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या आवश्यक? नेगेटिव चलता है, चारों ही चलते हैं लेकिन मेजॉरिटी, चारों ही चलते हैं लेकिन मेजॉरिटी कौन सा चलता है? दूसरों का नहीं देखे, अपने आप का देखे, अपने आप को देखे, अपने आप के अंदर चारों ही प्रकार के विचारों में से कौन सा ज्यादा चलता है? नेसेसरी देखा जाता है तो वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं। वेस्ट, यहाँ बैठे बैठे अचानक पास्ट में चले गए, यहाँ आए घर में चले गए, यहाँ हो रहे, भले सुन रहे हैं लेकिन सुनने के बीच बीच में कहाँ जा रहे हैं मन? मेजोरिटी पास्ट में जाता है ना, बहुत कम फ्यूचर में जाता है, ये करना चाहिए वो करना है, बहुत कम फ्यूचर में जाता है। वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपने पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव पर्सन है तो पॉजिटिव विचार ज्यादा चलते हैं और नेगेटिव पर्सनालिटी है तो नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं। और थर्ड लेवल में आता है आवश्यक विचार, है ना। तो इसीलिए अभी कौन से विचार ज्यादा करना चाहिए मन को सशक्त करने के लिए? पॉजिटिव। जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, जब जब ये नेगेटिव आया, वेस्ट आया, पॉजिटिविटी के तरफ हम चैनलाइज करें, उसको बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन को, मन अमन नहीं है, शून्य नहीं कर सकते, उसको चैनलाइज करते हैं, कर सकते, क्योंकि मैं मन का मालिक हूं। क्या है? मैं मन का मालिक हूं, इसको आप पक्का कर लीजिए। मैं मन का मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं उस मन को वैसा उस मन को मैं चला सकती हूं। जब ये सोचेंगे तभी ये नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, मैं नहीं कर सकती हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। जब भी ये संकल्प आया तो क्या सोचना है? नहीं, मैं आत्मा ओरिजिनली शक्तिशाली हूं, भले अभी मैं निशक्त हूं, शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा ओरिजिनली क्या है? शक्तिशाली हूं, मैं कर सकती हूं, है ना। जब ये सोचते हैं तो फिर अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति अंदर आ जाता है। शरीर को ना देखे, है ना, भले अभी शक्ति नहीं है शरीर में लेकिन आत्मा के अंदर वो शक्ति है, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर भी वो शक्ति आना शुरू हो जाते। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स अपने मन पर हावी होने देना ही नहीं चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेगेटिव और वेस्ट अपने मन पर हावी होने नहीं देना है, पॉजिटिव मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कर ही लेंगे। तो उस रीति से करते हुए मन को सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी बात है बुद्धि। बुद्धि क्या करता है? बुद्धि निर्णय एनालाइज करता है, तर्क करता है, एक फिल्टर का काम करता है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बुद्धि क्या करता है? उसको फिल्टर करते है। जैसे यहाँ आने से पहले आपको निमंत्रण आया माउंट आबू जाना है, तो दो दो तीन दिन विचार आए, जाना है कि नहीं जाना है, ये काम है, ये काम है, वो काम है, जाना है नहीं जाना है, बहुत सारे विचार आए। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे जाना है, तो फिर वही विचार, सारे और विचार सब कुछ खत्म हो गए और फिर जो निर्णय लिया वो निर्णय फिर कर्म में परिवर्तन होता है। जो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भले विचार बहुत सारे आए लेकिन बुद्धि मेरा बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर नहीं है बुद्धि क्या होगा, जैसे छन्नी होता है चाय की छन्नी, उसमें अगर ब्लॉकेज होता है, किचरा भरा हुआ होता है तो वो फिर फिल्टर नहीं होता, वहां हो जाता है कड़ा, बंद हो जाता है तो वो पास ही नहीं होता है। तो ऐसे अगर बुद्धि बंद है तो जो मैं निर्णय लेना चाहती हूँ वो निर्णय नहीं ले सकते। कहते हैं कि बुद्धि जैसे ब्लॉक हो गया है, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, क्या करना है नहीं क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि ब्लॉक है, क्लैरिटी नहीं है, है ना, तब ये आता है। और वो चाय की छन्नी में होल्स बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे होल्स है तो क्या होगा, जो फिल्टर होना चाहिए वो फिल्टर नहीं हो रहा है, सब कुछ पास जो डाला वो सब कुछ चाय की पत्ती भी पास हो जाता है, वो फिल्टर नहीं होता है। अगर बहुत सारे छेद है बुद्धि में तो क्या होगा, मन में जो सोचा समझे बिना हमने कर्म कर लिया। तो इसलिए कहते हैं क्या कर, कर्म करने से पहले सोचो समझो फिर कर्म करो, है ना। तो ये समझ का फैक्टर जब नहीं होता है ना, केवल सोचा और कर लिया, तब ये कहेंगे यहाँ छेद है। वो कब होता है, जब हमारे एडिक्शंस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, हमने सोचा और कर लिया, समझा नहीं है, समझ का फैक्टर वो होता नहीं है वहां। तो इसीलिए उसको भी परिवर्तन हम कैसे कर सकते, फिल्टर को, ये बुद्धि रूपी छन्नी को एकदम साफ, बिना कोई होल्स, बिना कोई छेद, बिना कोई ब्लॉकेजेस, क्लियर कैसे रखे, वो है मेडिटेशन के द्वारा। जितना हम अपने आप को समझते जाएंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट होते हुए परमात्मा के साथ कनेक्ट होते चलते हैं, बुद्धि क्लियर होता जाएगा। इसलिए कहते हैं मन क्लीन और बुद्धि क्लियर होना चाहिए यथार्थ कर्म करने के लिए। इसीलिए मन घोड़ा है और बुद्धि घुड़सवार है, है ना। उस मन को मैं कैसे लगाम दूं, बुद्धि कम करता है, है ना। मन में, मन के अंदर ताकत है, मन लेके जाएगा लेकिन बुद्धि कंट्रोल करता है। इसीलिए ये ज्ञान होना चाहिए बुद्धि के अंदर, मुझे कहाँ जाना है, और शक्ति होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात है संस्कार। जो बुद्धि निर्णय किया, निर्णय को कर्म में परिवर्तन करते हैं, कर्म जितना रिपीट होता जाएगा वो संस्कार बनता जाएगा, ये रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर, है ना। आत्मा के अंदर पांच प्रकार के संस्कार होते हैं। जो एक बच्चा अभी अभी जन्मा है, एक दिन का बच्चा है, इसके अंदर कौन सा संस्कार होगा, पिछले जन्मों का संस्कार, है ना। इसीलिए कभी कभी सोचते हैं परमात्मा पार्शियलिटी क्यों करते हैं, कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, कोई किसी को खाने की नौबत नहीं है, कोई तो गोल्डन स्पून इन द माउथ है, कोई बीमार होकर के जन्म लेता है, कोई तंदुरुस्त पैदा होता है, ये अंतर क्यों है। भगवान ये अंतर नहीं करते हैं, अपने ही कर्मों के आधार से हम आत्माएं जन्म लेते हैं। तो जो बच्चा जन्म लिया वो पास्ट जन्मों के संस्कार वो लेके आया है, और जैसे जैसे बच्चा पड़ा होता है उसके अंदर जो जीन्स है, उस जन्म के जो माता पिता के जो संस्कार है वो एडअप होना शुरू होता है। मान लीजिए माँ बाप बहुत सुंदर गायक है, गाना गाते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटी आ जाएगा क्योंकि वो जीन्स में है ना। तो पेरेंटल संस्कार, जो माता पिता के अंदर जो संस्कार होता है वह एडप होता है। और तीसरे प्रकार के संस्कार है कंपनी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जैसा उसका वातावरण है, जिसका संग करता है, जैसा संग वैसा रंग चढ़ना शुरू होता है। और चौथी बात है कि वर्तमान समय मैंने महसूस कर लिया मेरा ये संस्कार है, मुझे परिवर्तन करना है, वो आत्मा के अंदर शक्ति है परिवर्तन करने की। भले मेरा कंपनी खराब था, मेरा संग खराब था, मुझे माता पिता से इतना अच्छा संस्कार नहीं मिला, पूर्व जन्मों का संस्कार भी इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन मुझ आत्मा के अंदर वो ताकत है, फिर से वो अच्छे संस्कार आत्मा के अंदर लाने की। और क्यों? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल जो संस्कार है, निजी संस्कार है, वो सातों ही गुणों से भरपूर है। सातों ही गुण 100% है ना। तो वो मुझ आत्मा का ओरिजिनल है। जब ये समझ में आया, उसको परिवर्तन हम ला सकते हैं। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगा, कोई भी बात कठिन नहीं लगेगा, वो फिर हम ला सकते हैं। उसके आधार से ये सब चीजें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का ही खेल है आत्मा के अंदर। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। जैसे हम निर्णय लेंगे, कर्म में परिवर्तन होगा, कर्म रिपीट होते होते वो संस्कार बन जाता है। ये साइकिल में चलता है। जब संस्कार का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है, तो ये साइकिल है ना। तो ये साइकिल को अगर ये साइकिल अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव साइकिल है तो, अगर मान लीजिए मुझे गुस्से का संस्कार है, गुस्सा हर एक के लिए खराब है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, हर एक के लिए बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि फोकस करना कम हो जाता है, फोकसिंग पावर कम हो जाता है क्रोध से। कोई भी नेगेटिविटी अगर लेते हैं, आत्मा की शक्तियां कम होने के कारण से क्षमताएं कम हो जाती है। तो इसीलिए कहां से शुरू करें इस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करना है, तो कहां से करना है? मन से शुरू करना है। मन के ऊपर तो संस्कार का प्रभाव है ही है, लेकिन वह कहां चेंज करना है? जैसे पहले चित्र में देखा था, मन के ऊपर कौन कौन से चीजों का प्रभाव पड़ता है? जिन आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, उसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है। और दूसरी बात था बिलीफ सिस्टम, जो मान्यता बचपन से जो मानते आए हैं, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इन दो चीजों को हमें बदलना है, अगर ये नेगेटिव साइकिल है उसको परिवर्तन करना है। तो कैसे हम परिवर्तन करें? इन आंखों से जो भी हम देखते हैं पॉजिटिविटी लें, पॉजिटिव, क्योंकि ये तीन दरवाजे हैं मन के लिए। तो तीन स्थूल दरवाजे कौन कौन से हैं? आंख है, कान है और मुख है। जो भी हम देखते हैं इन आंखों से पॉजिटिव ग्रहण करें, पॉजिटिव ग्रहण करें। आजकल सोशल मीडिया में क्या हम ग्रहण कर रहे हैं? नेगेटिविटी। सोशल मीडिया खराब नहीं है, लेकिन जो मैं ग्रहण कर रही हूं वो खराब। मैं मास्टर हूं ना, मैं मालिक हूं ना। जो अगर मैं पॉजिटिव लू उससे मेरे लिए लाभ होगा। सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बातें भी हैं जिससे मैं प्रेरणा ले सकती हूं। तो इसको हम चेक करें, पॉजिटिविटी ले, हर बार मैं पॉजिटिविटी लूं और यहां से भी, इस दरवाजे भी से भी मैं पॉजिटिविटी लूं। अगर नेगेटिविटी भी आएगा उसको बंद करने की ताकत मुझे है, क्योंकि मैं मालिक हूं, है ना। और मुख, मुख के द्वारा तो बोलते हैं, ये तो आउटपुट है, लेकिन इनपुट क्या है? भोजन। जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना। जब भी हम भोजन करते हैं पॉजिटिव इसमें स्थिति में स्थित होकर के फिर उसको ग्रहण करें, ऐसा अरे ये भोजन है क्या करना है ये नहीं इच्छा है, ये नेगेटिव सोचते सोचते अगर लेते हैं तो फिर उसका प्रभाव भी शरीर पर नेगेटिव पड़ता है। तो इसलिए इसको हमें चेक करना है, तब जाकर के मन को हम पावरफुल बना सकते हैं। इसीलिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करें। अगर कुक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या करना है, मैं कर्म कर रही हूँ नहीं, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, स्पोर्ट्स पीपल स्पोर्ट्स जो पर्सन है ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखें, मैं खेल रहा हूँ मैं खेल रही हूँ नहीं, क्या सोचना है, अभी क्या सोचना है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा खेल रही हूँ। खेल शुरू होने से पहले 2 मिनट इस स्थिति में स्थित होकर के फिर खेलना शुरू करें, आप देखेंगे आपके परफॉर्मेंस में बहुत जमीन आकाश का अंतर आ जाएगा। केवल स्मृति से, केवल सोच से बहुत ताकत आत्मा के अंदर बढ़ जाती है, मैं आत्मा हूँ शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये बार बार सोचने से आत्मा की शक्ति अपने कर्मों में संचार होता जाएगा। इसीलिए बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियस, शरीर के भान, देह भान और आत्मिक भान में अंतर क्या होगा, देह भान में स्थित होने से क्या होगा, कंपेयर करना शुरू करेंगे, ये अच्छी है मैं अच्छी नहीं हूँ, ये शक्तिशाली है मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, ये कंपेयर करना शुरू हो गए। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, वो भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ, कोई अंतर है ही नहीं है, कोई भी धर्म का अंतर नहीं है, कोई भी जाति का अंतर नहीं है, कोई भी देश का अंतर नहीं, एक केवल एक आत्मा है, मैं भी आत्मा आप भी आत्मा, जो एक्सेप्टेंस फिर। और देह भान में डिवीजन शुरू होगा, ये मेरा है ये तेरा है ना, नहीं, ये सब आत्मिक स्थिति में आत्मिक भान में हम सब एक है, कोई अंतर नहीं है, है ना। और फिर देह भान में इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे, कान क्या देखना चाहता है, जीभ क्या खाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, इसकी इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, जैसा मैं चलाना चाहूँ, इसको खाना नहीं, डॉक्टर ने मेको बोला है कि नहीं खाना चाहिए, या एथलीट्स के लिए खाना अच्छा नहीं है, लेकिन जीभ के रस में आकर के मैं वो खाना चाहती हूँ। लेकिन कंट्रोल करना इजी कब हो जाएगा, मैं आत्मा मालिक हूँ, जीभ को जैसा मैं चलाना चाहूँ वैसे मैं चला सकती हूँ। और फिर देह भान में मृत्यु का डर होगा, और आत्मिक स्थिति में तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु का भी डर नहीं है। ये है संपूर्ण परिचय, अपने यथार्थ परिचय, अपने आप का संपूर्ण परिचय हो गया। जैसे बायोडेटा आप देते हैं, कोई भी अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, कहीं भी है, अप्लाई करते समय कुछ बातें आप लिखते हैं, सबसे पहले नाम आता है, क्या नाम है आपका, नाम बोलते ही शरीर का नाम आता है ना, तो आत्मा के परिचय में क्या कहेंगे आप, वो तो गुण हो गया ना, आत्मा नाम क्या है, आत्मा कहे, रूह कहे, स्पिरिट कहे, या फिर लिविंग फोर्स कहे, आत्मा है ना। और फॉर्म माने रूप, फोटो चिपकाते हैं ना फॉर्म्स में, ये जो भी लिखते हैं तो उसमें फोटो चिपकाते हैं, तो फोटो आपका रूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, निराकार कहने से अच्छा है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, स्टार मिसल नक्षत्र की तरह है न, ना, एक अति सूक्ष्म ज्योति है, स्टार है। और माता पिता का नाम वो कल सुनने में समझ में आएगा, ठीक है। और एड्रेस क्या है आत्मा का, एड्रेस क्या है आपका? एड्रेस में दो एड्रेस लिखते हैं, एक है टेम्पररी एड्रेस और दूसरा है परमानेंट एड्रेस, है ना। आपका टेम्पररी एड्रेस क्या है? यहाँ टेम्पररी एड्रेस ये है। क्यों ये टेम्पररी, परमानेंट एड्रेस क्यों नहीं बन सकता? यहाँ परमानेंट एड्रेस क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक दिन तो मरना है ना। ये मैं तो ये शरीर के साथ अमर हो नहीं सकती हूँ, मैं हमेशा के लिए जी नहीं सकती हूँ इस शरीर के साथ। हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर एक दिन मुझे छोड़ना होगा, ये प्रकृति है, ये तो हकीकत है ना। इसलिए ये टेम्पररी एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कौन सा है? परम धाम। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर से आए थे ऊपर जाना है, अकेले आए थे अकेले जाना है परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम जिसको कहते हैं, वो हमारा सब आत्माओं का परमानेंट एड्रेस परम धाम है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? ये जो डेट ऑफ बर्थ आप कहते हो, तो ये शरीर का डेट ऑफ बर्थ है, राइट? जो भी डेट ऑफ बर्थ, आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, वो अमर है, उसकी कोई जन्म और मृत्यु है ही नहीं, अजर अमर अविनाशी है, वो डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं आत्मा का। और क्वालिफिकेशन क्या है आत्मा का? क्वालिफिकेशन में क्या लिखता है, क्या पढ़ाई किया है ना, क्वालिफिकेशन में वो लिखते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब क्या पढ़ाई की, उसके आधार से हम अपने अंदर वो ज्ञान है वो कर्म हम कर सकते हैं। ये डॉक्टरी पढ़े हैं, एमबीबीएस पढ़े हैं, तो मैं सर्जरी मतलब उस तरीके से कर्म कर सकते कि दूसरों को ट्रीट कर सकती हूँ, उसके वो क्वालिफिकेशन मेरे अंदर है। तो आत्मा के क्वालिफिकेशन क्या है? सात गुण, सतो गुण, है ना। सात गुण आत्मा के क्वालिफिकेशन है, उन गुणों के आधार से मैं आत्मा कर्म करती हूँ, क्वालिफिकेशन। ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, केवल सेल्फ रियलाइजेशन मेरा प्रोफेशन है, बस। दूसरों को कुछ देना नहीं है, समाज को कुछ देना नहीं है, मैं ही मैं हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन करके एक जगह पे बैठ जाओ बस, ये काफी है। इस संस्था का बहुत सुंदर एक स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले मैं परिवर्तन हूँ, ताकि फिर मैं दूसरों को परिवर्तन होने में प्रेरणा दूं, ये है प्रोफेशन हमारा, है ना। ताकि वो पॉजिटिविटी फैलाए, मैं पॉजिटिव रहूं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे दुनिया में वो फैलाऊं, है ना। ये हम सभी का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है ना। तो ये है संपूर्ण परिचय आत्मा का, ठीक है। कोई प्रश्न? हाँ जी। वो गलत कर रहा है। आग कैसे बुझता है? आग आग से बुझता है, आग बुझता है पानी से। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, हाँ उसके लिए एक्शन जरूर लेना है, लेकिन गुस्सा उसका सोल्यूशन नहीं है। जो तरीके से ऐसा कहे कि अगर कोई गलत करता है तो मैं लॉ हाथ में ले लूं, कोई नियम बना हुआ है समाज में, उसके आधार से चलना होगा। ऐसा नहीं कि वो गलत किया तो मैं भी जाकर के पीटूं उसको, लॉ हाथ में नहीं ले सकते हैं। आर्टिफिशियल गुस्सा, ऊपर से गुस्सा कर रहे हैं। इनजस्टिस है, इनजस्टिस है तो बैठ के बात करें, आपको बात करें, सामना करें, ये कहे गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है इसका मतलब है मैं भी चिल्ला चिल्ला करके बोलो, चिल्ला चिल्ला करके बोलने से सच नहीं हो जाएगा, सच को चिल्लाने से सच में और वो बल मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सच को सिद्ध कई बार सच को सिद्ध नहीं किया जाता है। हाँ ठीक है, बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सहन करते रहो, इनजस्टिस को आप सहन करते रहो, हम ये नहीं कहेंगे। हाँ बोलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से बोलना चाहिए। बैठे कमिटी बैठे, जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, तो उस वहां तक बात लेके जाएं, मतलब कोई यथार्थ रीति से राइट तरीके से हमें सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं, गुस्सा सोल्यूशन नहीं है उसका, गुस्से से और काम बिगड़ जाएगा, गुस्सा काम बिगड़ जाएगा। हाँ जी ठीक है, बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन फिर अभी 3 दिन में मुझे लगता है कि आपके सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम कुछ समय के लिए उसका अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का। ये ना केवल मेडिटेशन के लिए फाउंडेशन है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, लेकिन लाइफ के लिए फाउंडेशन है। तो इसलिए इस पाठ को जितना आप पक्का करेंगे, ना केवल मेडिटेशन करते समय अपने आप को आत्मा समझना, लेकिन कर्म करते समय भी बार बार इस बात का अंडरलाइन करें, मैं आत्मा ही कर रही हूं, मैं आत्मा ही कर रहा हूं, आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटी 7 गुण उसके बारे में बार बार अभ्यास वो करते जाएंगे, तो बहुत कुछ आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे पहले बैठ करके उसका अभ्यास हम करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप सोचते जाएंगे और विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। सीधा बैठ जाएंगे, बैक बोन सीधा रखें, और आंखों को आप भले एक्चुअली यहां कहा जाता है ओपन आई मेडिटेशन, आंखों को खुला रख करके मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे काल तक बंद ना रखें, बीच बीच में आंखों को खोलें, क्योंकि पूरा आंख बंद रखने से फिर शायद कभी कभी नींद की तरफ भी चले जाएंगे या मन भटकना भी शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए फोकस मेन पॉइंट है, और फोकस आपको कोई आगे वाली चीज एक पॉइंट को नहीं, भले देखे एक पॉइंट को, आंखों को एक जगह पर स्थिर रखना है, लेकिन मन का पूरा फोकस अपने ब्रुकुटी के बीच में, मन का पूरा फोकस अपने ब्रुकुटी के बीच में। चले अंतर जगत की ओर, आंतरिक यात्रा पर चलते हैं, आसपास के वातावरण से, लोगों से अपने मन और बुद्धि को डिटैच करें, भ्रुकुटी के मध्य में मन के स्क्रीन पर अपने विचारों को देखने की कोशिश करें, अपने मन को बताएं कि इन 5 मिनटों के लिए, केवल 5 मिनट पूरी तरह फोकस करें अपने आप में, जो भी विचार आ रहे हैं उसको वहां रोके और केवल कुछ मिनटों के लिए अपने आप के ऊपर फोकस करें। अपने आप को देखने की कोशिश करें, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ अजब सितारा। बहुत सुंदर रीति से चमक रहा है। वो चमकता हुआ अजब सितारा मैं हूं। मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, चैतन्य शक्ति हूं। अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं चैतन्य हूं। ये शरीर मेरा जड़ है। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूं। मैं आत्मा मालिक हूं। राजा हूं, कंट्रोलर हूं अपने ही कर्म इंद्रियों का। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा बाहरी जगत को देख रही हूं। देखने वाली मैं आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन कानों द्वारा मैं सुन रही हूं। ये कान मेरा साउंड सिस्टम है। सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मुख द्वारा मैं आत्मा बोल रही, ब्रेन के बीचों बीच बैठकर मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रही हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। निरंतर मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन फैल रहा है। पूरे ब्रेन में शांति के प्रकंपन फैल रहा है। पूरे शरीर में, गर्दन, शोल्डर्स, पेट, हाथ, पैर, पूरे शरीर में शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा के द्वारा फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कर्म करते समय भी बीच बीच में मैं इस स्मृति में स्थित होती हूं और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखती हूं। से मुझ आत्मा के निजी गुण शांति, शक्ति, आनंद का के प्रकंपन चारों तरफ फैला रही हूं। ओम